कहा जाता है कि मर्द यह बहुत ही शुद्ध भावना यह भी है कि किसी भी प्रकार से अगर जहां हमारा कोई परिवार न चले तो भगवान को याद कर लेना, यह भी एक अपने आप में भक्ति है। जीव का यह स्वभाव है कि वो प्रयास अपना प्रयास करता है कि हम किसी दुख का किसी संकट का सामना करें, लेकिन जब वो हार जाता है परवश हो जाता है लाचार हो जाता है तो वह किसी और का शरण लेता है। इसलिए देवता लोग इस स्थिति में भी अगर भगवान शरण में आए तो और अन्य लोगों से उनकी स्थिति ऊंची ही जाननी चाहिए। मनुष्यों से तो करोड़ों गुना देवताओं की स्थिति सही बताएंगे। अब इस श्लोक में जो हम लोग आज पढ़ रहे हैं, अब अपने वास्तविक रक्षक के पास पहुंचने के रास्ता को बता रहे हैं देवता लोग। खुद पहले नमस्कार करते हैं। भक्ति का यह एक अंग है भगवान को प्रणाम करना। मेरे गुरु महाराज एक क्लास में बताते हैं एक प्रवचन में कि अगर कितना भी पापी से पापी व्यक्ति हो, अगर को केवल वह एक नियम बना ले कि वह आकर के मंदिर में अर्चा विग्रह के सामने प्रतिदिन नियमतः होकर भगवान को प्रणाम करें तो भगवान उसको अपनी कृपा जरूर देंगे। क्योंकि प्रणाम करने का अर्थ ही है, किसी के चरणों में झुकने का अर्थ ही है कि वह श्रेष्ठ समझ रहा है तब उनके सामने झुक रहा है। तो यह भी एक भक्ति का अंग है। अब देवता लोग यहां प्रणाम कर रहे हैं कि मैं उसको प्रणाम करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। जहां पहुंचने के बाद फिर कोई लौट करके वापस नहीं आता। एक ऐसा घर है जिस घर में प्रवेश करने का दरवाजा तो खुला हुआ है, एंट्री तो है लेकिन आउट डोर नहीं है, बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। आप सोचो कि वह परम पुरुष कैसा होगा जो अपना दरवाजा खोल करके रखा है कि मेरे पास जीव आए और फिर उनको वापस नहीं जाने देते, दूसरा गेट बंद करके रखे। सोचिए कि कितना प्रयास करना चाहिए भक्ति के लिए। इस श्लोक के पहले वाले में और बीच पहले लाइन भाई श्लोक के पहले लाइन से दूसरी लाइन में भी बताया गया है कि कैसे लोग उस धाम में जाते हैं, और तीसरे लाइन में भी विशेषता बताई गई कि कैसे कैसे व्यक्ति उस धाम में प्रवेश कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इस शब्द का व्याख्या समझे, हरि और ईश्वर। हरि का दो अर्थ टीकाकारों ने लिखा है, हरि मतलब बंदर भी होता है और हरि मतलब दूसरा अर्थ यह होता है कि जो दूसरे के दुख को हरता है। हरि हरत पापानि दुश्चितैरपि स्मृतः अनिच्छामपि संप्रिष्टयतः देवहि पावकः। हरि का स्वभाव बताया गया, हरि हरति पापानि। हरि शब्द का अर्थ है कि हरि का उच्चारण करने मात्र से, हरि शब्द में इतनी शक्ति है कि वो सारे पापों को हर लेता है। हरि हरत पापानि दुष्ट चित्तय रवि स्मृतः। दुष्ट चित्त वाले व्यक्ति भी अगर हरि शब्द का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, तो हरि उनके पाप को हर लेते हैं। और दूसरे जगह अन्य पुराणों में हरि शब्द की व्याख्या बताई गई है कि हरि रित्य हरि नित्य स्मरति इति हरिद्वयम्। जो ये हरि शब्द जो दो अक्षर से बना है, इस दो अक्षर का कोई अगर उच्चारण करता है तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद इन चारों के फल को, इन चारों के तत्व को व्यक्ति जान लेता है केवल ये दो अक्षर उच्चारण करने से। आदि तास्तेन तेनेक्ता हरिरित्य चरम द्वयम्। केवल जिसके जीवा पर जीवा अग्रे वर्तते जस्य हरिरित्य चरम द्वयम्, जिसके जीवा के अग्र भाग पर यह हरि शब्द दो अक्षर वाला अगर नृत्य करता है तो उसने चारों वेदों के पूर्णतः तत्व को जान लिया और आदि तास्तेन तेनेक्त हरिरित्य चरम द्वयम्। और इस संसार के सारी गतिविधियों से वो अपने को छुड़ा करके भगवान के धाम जाने लायक बना लिया। कितनी इस शब्द की शक्ति है, क्योंकि हरि ही समर्थ है। दूसरे के दुख को दूर करने में हरि ही समर्थ है। हम लोग यह भी समझने का प्रयास करें कि सबसे बड़ा दुख क्या है। लोग सोचते हैं कि किसी के शरीर में कुछ हो गया, कोई बीमार पड़ गया, कोई अन्य स्थितियों से ग्रसित हो गया तो वह दुखी व्यक्ति है। लेकिन शास्त्र यह परिभाषा देता है दुख और आपत्ति और विपत्ति का कि सबसे बड़ा दुखद स्थिति वह है जब व्यक्ति या जीव हरि से विमुख होता है तो विशेष विपत्ति इति विमुख। जो हरि से विमुख हो जाता है वो व्यक्ति विशेष विपत्ति में आ जाता है। इसलिए हरि की शरण जाने के लिए देवता लोग पहला उपाय बताते हैं कि तस्मै नमस्कार करो। हम सादर नमस्कार करते हैं। हरि शब्द के साथ साथ ईश्वर शब्द लगा। ईश्वर का अर्थ होता है कंट्रोलर, सर्वश्रेष्ठ, नियामक, नियंत्रक। और कौन ईश्वर है? अन्य पुराण में, शिव पुराण में भी और पद्म पुराण के अंदर भी एक श्लोक आया है कि सर्व ईशो अहम सर्व जगता नाम। भगवान शिव के विषय में बताया गया है, वर्णन किया गया है कि ईशो अहम सर्व जगता नाम, सारे जगतों का ईश्वर मैं हूं। मतलब शिव जी के विषय में बताया गया है, शिव जी की विशेषता। लिखते हैं लोग कि सारे जगत का ईश्वर मैं हूं, लेकिन शिव जी उस बात को स्वीकार करते हुए उसके ठीक दूसरे लाइन में कहते हैं, पार्वती से वाक्य कहते हैं कि ईशो अहम सर्व जगता नाम हरे नान्यम गति नृणाम। सत्यम सत्यम वदाम्यहम हरि अन्यथा गति निर्णय। कि लोग शिव भगवान शिव कहते हैं कि लोग ऐसा कहते हैं कि मैं सारे जगत का मैं ईश्वर हूं, ईशो अहम ईश्वर मैं हूं, ऐसा लोगों की मान्यता है। लेकिन फिर भी मैं हरि का नाम जप करता हूं, मतलब विष्णु हरि का नाम, हरि का शब्द का अर्थ प्रत्यक्ष रूप में लिखा है विष्णु का नाम मैं जप करता हूं। भगवान शिव कहते हैं कि लोगों की ऐसी मान्यता है कि मैं सारे जगत का मैं ईश्वर हूं, ईश्वर का अर्थ है मालिक, तो शिव जी भी एक लोक के मालिक हैं, अर्थात एक डिपार्टमेंट उनको दिया गया श्रृंगार का। तो लोग कहते हैं कि शिव जी भी ईश्वर है, तो अपनी ईश्वरता को इंगित करते हुए भगवान की ईश्वरता के भाव को बढ़ाते हुए भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, सत्यम सत्यम बता रहा हूं, मैं सत्य सत्य कह रहा हूं कि हरि के नाम के बिना कोई गति नहीं है, इसलिए मैं अपनी आंख बंद किए हुए अनवरत में राम राम करता रहता हूं। ईश्वर का अर्थ नियामक है। हम लोग भी एक छोटे छोटे घर के, छोटे संसार के या नहीं तो अपने परिवार के ईश्वर हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा परिवार हमारे बस में रहे, लेकिन उससे दूर हट करके अपने दिमाग को और बड़ा करके सोचने का प्रयास करना चाहिए कि सबका कंट्रोलर कौन है। अगर इन शब्दों को अगर हम पढ़ करके और व्याख्यान सुनने के बाद आचार्यों से समझने का प्रयास करते हैं तो पता चलता है कि अपनी गणना तो नगण्य है, कोई गिनती ही नहीं। जो हम लोग अपने आप को कुछ समझते हैं कुछ है ही नहीं। इसलिए अपनी सबसे बड़ाई इसी में है। इस श्लोक के अंदर बताया गया है कि जैसे बड़े बड़े लोकपाल या बड़े बड़े ब्रह्मर्षि ऋषि सन्यासी अमर आत्मा संजन आत्मा इन व्यक्तियों ने अपने मन पर काय पर बुद्धि पर जिस प्रकार संयम रखते हुए जिनकी शरणागति को स्वीकार करने के पथ को पकड़े हैं उसका अनुगमन करना ही हमारा स्वभाव है। अगर हमारा वैसा स्वभाव है तब तो हम इस संसार से पहले ही छुटे होंगे। अगर इस पद से हम किसी दूसरे पद को अगर पकड़ने का प्रयास करते हैं तब तो हमारा कल्याण नहीं है। प्रभुपाद जी लिखेंगे आज के तात्पर्य के अंदर लिखे हुए हैं कि संसारिक जीव, प्रभुपाद जी छठे स्कंद के नौवें अध्याय का 22वें श्लोक का अनुवाद लिखते हैं कि कोई व्यक्ति अगर भगवान की शरणागति को छोड़ करके भगवान पर भरोसा न करके अगर और किसी का शरण लेकर के वही संसार से पार उतरना चाहता है, संसार को पार करना चाहता है, तो वह वैसा है जैसे कोई कुत्ते को पूछ पकड़ करके वो समुद्र को पार करना चाहता है। ऐसा संभव है कोई व्यक्ति कुत्ते को पूछ पकड़ करके समुद्र पार करना चाहे तो पार हो जाए? कुत्ते भी, कुत्ता भी डूब जाएगा साथ साथ अपने भी। आप सोचिए कितनी महत्ता बताएंगे, वेद व्यास जी कितना हम लोग जैसे डर माइंडेड व्यक्तियों को समझाए कि तुम लोग भगवान की पूर्णता शरणागति हो। पढ़ते हैं, आचार्य लोगों से सुनते हैं, समझने का भी प्रयास करते हैं, लेकिन फिर वही बात है, वही बात जहां है वही। छठे स्कंद में युधिष्ठिर महाराज अरे नारद और युधिष्ठिर महाराज के संवाद में आया है। युधिष्ठिर महाराज को नारद जी बताते हैं कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो गुरु को भी ऐसा साधारण व्यक्ति समझते हैं नहीं रखते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा ही तो गुरु है, और गुरु में भी दोष निकालते हैं कि मैं तो अपने गुरु महाराज को देखता ही नहीं, कभी सोना वाला जप करते हैं। गुरु को भी देखने का परखने का प्रयास करने लगते हैं। महाराज जी दूसरी महाराज से कहते हैं कि ऐसे मानसिकता वाले व्यक्ति कितना भी भक्ति करे तो उसकी भक्ति उसी प्रकार की है जैसे हाथी तालाब में स्नान करता है और फिर बाहर आकर के धुर फेंक लेते। आप सोचिए हमारी क्या औकात है कि हम गुरु को परखने का प्रयास करें। पता नहीं गुरु सरोवर वाला जब भी नहीं करता हमको तो आदेश दिया कि सोना वाला जब करो, उसको ये पता नहीं है कि वो नित्य लीला में है, अनवरत लीला चल रही है। और तुम अपनी बुद्धि सीमित बुद्धि से किसी समुद्र को मापने का प्रयास मत करो, तुम्हारी हाथ बहुत छोटी है, बुद्धि बहुत खोटी है। अपने औकात में मेरा नसीब पहले हम तात्पर्य को पढ़ लेते हैं, उसके बाद बहुत कुछ बोला जा सकता है इस श्लोक के ऊपर। एक एक शब्द इसके अंदर ऐसे है जिसमें बहुत समय तक बोला जा सकता है, क्योंकि अगर केवल हम लोग दो शब्द ईश्वर का अर्थ या हरि का अर्थ समझ लें तो हम अनवरत हरि का स्मरण करेंगे, हमेशा हम सर्वश्रेष्ठ भगवान को समझेंगे। लेकिन अपनी स्थिति यह है कि हम लोग गंगा किनारे जाते हैं तो गंगा दास बन जाते हैं, जमुना किनारे जाते हैं तो जमुना दास बन जाते हैं, कृष्ण का दास बनने से वंचित रह जाते हैं। एक निष्ठता होनी चाहिए। द्रौपदी जी ऐसे धुलाई करके दिए हैं इस सोसाइटी को कि अगर ठीक पथ पर इसको अपने जीवन में ठीक से अगर इसको उतारे हैं तो कभी भी हिल नहीं सकते। लेकिन इसमें खिचड़ी करने के कारण लोग भागते हैं, भाग जाते हैं, नहीं समझते हैं तो कहते हैं इसको वाले ऐसे। अरे प्रभुपाद जी ने जो दिया वो किसी संत ने नहीं दिया, और भगवान को भगवान बताया। अक्सर करके मैं तो कई बार प्रवचन में कह देता हूं कि भगवान को भगवत्ता के रूप में समझने वाला बताने वाला हमने तो प्रभुपाद जैसे कोई संत देखा ही नहीं। भगवान को किस रूप में भगवान उन्होंने माना और कितना आदर दिया प्रभुपाद जी के बुद्धि से हम आंकड़ा लगा करके देख सकते हैं। कितनी ऊंची स्टेज बना दिया प्रभुपाद जी ने भगवान की पूजा की विधि, भगवान को प्राप्त करने की कितनी सहज साधना उन्होंने बताया, और वही साधना को जिस साधना से जिस पथ को पकड़ने से हम भगवान के धाम जा करके वहां स्थित हो सकते हैं, तो अपने अंदर कौन सी योग्यता होनी चाहिए कुछ शब्द इस श्लोक के अंदर बताए गए। अगर सन्यासी बनने के बाद सन्यासी का शब्द है, सन्यासी बनने के बाद सम्यक न्यास इति सन्यास, सारा कुछ त्यागने के बाद अगर कृष्ण में हमारी एकाकी भक्ति नहीं है तो वह किस काम का सन्यास। छठे स्कंद के अंदर ही नारद युधिष्ठिर संवाद में एक श्लोक नारद जी बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज से कि गृहस्थ क्रिया त्यागो व्रत त्यागो कठोरपि, गृहस्थ क्रिया त्यागो व्रत त्यागो कठोरपि, संन्यासिना आया है कि संन्यासिना ग्राम्य वार्ता। श्लोक का अनुवाद इस प्रकार का है, दो शब्द श्लोक में भूल रहा हूं जिसे वो श्लोक नहीं पकड़ पा रहा है कि अगर गृहस्थ अपने कर्म को त्याग कर देता है तो किस काम का गृहस्थ है। और बटुक बना है ब्रह्मचारी सन्यासी बन करके वो भिक्षुकों की भांति जीवन जीने के लिए सन्यास ग्रहण करके भिक्ष मांग करके अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, तो उसमें सन्यास किस प्रकार का है? उस सन्यास लेने से क्या फायदा? नारद जी का कहने का तात्पर्य यह है कि सारा आश्रम स्वीकार करने के बावजूद अगर हमारी एकाकी शरणागति कृष्ण के चरणों में नहीं है तो यह आश्रम किसी काम का नहीं। क्योंकि ये आश्रम बनाए गए हैं तो भगवान से प्रीति स्थापित करने के लिए, न कि किसी को ठगने के लिए वेशभूषा बनाया गया। गृहस्थ है, हम गृहस्थ धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी धर्म का पालन नहीं कर रहा है, वानप्रस्थी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, सन्यासी अपने धर्म का पालन नहीं कर रहा है, तो कैसे भगवान का धाम जाएगा? और वह धाम ऐसा है जहां से जाने के बाद फिर वापस नहीं आया जाता। जब तक हम इन आश्रमों की तैयारी नहीं करेंगे, ठीक से पालन नहीं करेंगे, तब तक हम उस धाम में जाने लायक बनेंगे नहीं। इसीलिए तो ये शब्दों का संकेत किया गया है इनके अंदर। अब कोई परावार न देख करके परवश होकर के सारे देवता अपना मुख भगवान की तरफ मोड़ते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को प्राप्त करने की साधना की तरफ उन्मुख होते हैं और यह भी बताते हैं कि वहां ऐसे व्यक्ति जाते हैं जो विशुद्ध आत्मा है। हम उस दिशा को सादर नमस्कार करते हैं, देवता लोग कह रहे हैं कि जहां भगवान स्थित हैं, जहां संन्यास आश्रम में रहने वाले विशुद्ध आत्मा महान साधु पुरुष जाते हैं। एक शब्द और आ गया, साधु पुरुष। सात मतलब सुंदर धूमिन साचरण, जिसका चाल चलन बोली भाषा रहन सहन सब कुछ के अंदर सुंदरता दिखता है, साधुता दिखता है, उसको साधु कहते हैं। आचरण ही साधु का नहीं तो उसको हम साधु कैसे कहें? ये सारे शब्द अगर हम लोग अपने अपने ऊपर केवल व्यक्तिगत रूप से कसे हैं तो अपनी असलियत की पता चल जाएगा कि हम लोग क्या है। यह केवल दूसरे को ज्ञान देने के लिए नहीं, यह अपने ऊपर भी विचार करने की जरूरत है। जहां जाकर वे फिर कभी नहीं लौटते, लेकिन उस धाम में जाया कैसे जाएगा? तो यहां बता रहे हैं कि बिना सोए मंगला आरती तो पूरा अटेंड ही नहीं कर पाते हैं, पूरी रात्रि सो करके पूरी रात्रि जग करके कैसे भजन कर पाएंगे? मंगला आरती कितना मिस हो जाता है। और यह जिस दिन मंगला आरती नहीं आए उस दिन तो अपने आप को ग्लानी महसूस जरूर करना चाहिए कि अपन आज के दिन सब कुछ गए, कोई मंगल नहीं हो। कितना आलस आता है सुबह सुबह में, कितनी प्यारी लीला आती है सुबह में। इसीलिए प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समय चूज किए हैं, चयन किए, क्योंकि उस समय में देवता लोग भी हमारी सहायता करते हैं भजन में, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। और उस समय का इतना प्रभाव होता है कि पापी से पापी व्यक्ति भी अगर जब अपना निद्रा छोड़ता है तो उसके मुख से अपने आप राम राम आता है, क्योंकि उस समय देवता मदद करते हैं। सब वह समय अनुकूल होता है, इसलिए अगर सोए भी तो भगवान के लिए, बिना सोए जितना तक समय पर सो जाए और समय पर जग जाए। फिर गुरु महाराज कहा करते हैं अपने प्रवचन में, फिर मंदिर में या वृंदावन में, वृंदावन में सोना खाना रहना और घूमना भी अपने आप में भक्ति है। प्रभुपाद धाम की महिमा बताएगा इस तात्पर्य के अंदर कि वृंदावन जैसे अयोध्या जैसे धाम में रहना या उस धाम में अपने भक्ति को हम अनुकूल परिस्थिति बना करके हम भगवान की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो धाम हमारा सहायता करता है। नहीं हम धाम की निंदा करते हैं तो उस धाम का जो नियंता है उसका भी निंदा कर रहे हैं। रमेश बाबा तो कहा करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नामी का अगर निंदा कर रहा है, नामी का निंदा कर रहा है वो तो नाम नहीं ले रहा। हम जैसे भगवान का अगर नाम ले रहे हैं या कोई भी व्यक्ति ले रहा है, अगर उस व्यक्ति का हम निंदा कर रहे हैं तो उस नाम का वास्तव में हम निंदा कर रहे हैं। इसलिए अगर धाम की निंदा कर रहे हैं तो उस धाम का जो नियंता है, जो अपना घर भगवान ने माना है कि धाम मेरा घर है, तो वास्तव में भगवान का निंदा कर रहे हैं। नाम और नामी में, धाम और धामी में कोई अंतर नहीं है। अपने को हम परख सकते हैं कि हम लोग जाते हैं तो क्या क्या ढूंढते हैं, वहां कहीं अच्छाई तो ढूंढे, नुक्स निकालना शुरू करते हैं, ऐसा है वैसा है। अपने निद्रा को हम करें कम करें, पहले देवता लोग ये उपाय बता रहे हैं, बिना सोए विनिद्रा शब्द आया इस श्लोक के लास्ट वाले पद से पहले, कि हम अपने निद्रा का त्याग करें। बिना सोए अपने मन को पूर्णतया वश में करके तथा केवल अपनी सांस पर जीवित रहकर विभिन्न लोकपालों ने इस ध्यान से ऋषिकेश की पूजा करनी प्रारंभ की। पूजा शब्द के लिए विपुतुष्ट शब्द आया है सर, उपतस्थ, क्योंकि अगर हम लोगों के लिए तो इतना सुंदर प्रभाव दे दिया कि हम लोग तीन बार भी खा करके अगर अच्छे से 16 बार चैंटिंग कर ले, 2 घंटा प्रभाव की बुक्स पढ़ ले, तो यह भी अपने आप में काफी है। लेकिन ठीक समय पर प्रसाद मिलने के बाद भी, सारा सुख सुविधा मिलने के बाद भी अगर हम इन नियमों को ठीक से नहीं पालन कर पा रहे हैं तो सोचिए कि हम लोग अपने ऊपर कर्ज ले लें। इतनी सारी सुख सुविधा देने और दिलाने की जरूरत है केवल कृष्ण संतुष्टि हेतु, भजन करो, कुछ अपनी सदगति के पथ को साफ करो। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद महाराज के कि तस्यै काष्ठाय, ये दो शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान अपने ब्रह्म तथा परमात्मा रूप में सर्वत्र प्रत्येक दिशा में प्रत्येक हृदय में तथा प्रत्येक परमाणु में विद्यमान है। ऐसा कोई स्थान बताइए जहां भगवान ना हो। देख रहा है कोई स्थान जहां भगवान ना हो? लेकिन हम लोग कहां भगवान को देखते हैं? पश्चन अपने पश्चिमी देखते हुए हमारा अधिकार वर्ण को नहीं देख पाते, सामने खड़े हो जाएंगे एक टक से हम देखते रहेंगे, लेकिन क्या देखा? देखा भी तो क्या देखा? उसे नहीं, जब तक इस कचड़े को बाहर नहीं करेंगे इसके अंदर से, इस गुणाम से, तब तक हम उस छवि का ध्यान नहीं कर पाए। इसके अंदर हम लोग और कुछ रख चुके हैं, स्कंद के अंदर ही बताया गया कि विधनोती सूर्य साहब अपने हृदय की धुलाई करो, पहले इस हृदय को खाली करो।
संसारिक कृपा कि धीरे धीरे मिलने के बाद भी आपको कुछ
खुद ही दूर हटने का प्रयास करो। जो भी हम लोगों से सर्वश्रेष्ठ भक्त है, जो वृंदावन में वास कर रहे हैं, वास्तव में भक्ति का वो रस ले रहे हैं, तो उनके व्यवहार से ही हम ये शिक्षा ले सकते हैं कि उनको भगवान ने दिया है तो संसारिक वस्तु में कितना आनंद ले रहे हैं और भक्ति में कितना आनंद ले रहे हैं। हालांकि देंगे भगवान सब कुछ, लेकिन कृपा विशेष और मिलेगा। धाम में रहने का यह फल है कि वहां के भजनों में लगे हुए भक्तों की भी कृपा मिल रही है, उन लीलाओं का फल मिल रहा है, उस भूमि की पवित्रता मिल रही है, और उस भूमि का फल के साथ साथ जो हमारी दृष्टि है वो जहां देखते हैं वहां पवित्रता आती है, क्योंकि उस धाम का महत्व है। यदि कोई ऐसे धाम में आश्रय ग्रहण करता है तो भगवान की पूजा करनी सुगम होती है और आध्यात्मिक उन्नति भी जल्दी होती है। वास्तव में आज भी कोई व्यक्ति भारत में वृंदावन तथा ऐसे ही अन्य स्थानों में जाकर तुरंत ही आध्यात्मिक कर्मों का फल प्राप्त कर सकता है। प्रभुपाद जी गारंटी देते हैं कि आज भी कोई प्राप्त कर सकता है, लेकिन हम लेने लायक तो बने। भगवान की कृपा सर्वत्र बढ़ रही है, सर्वत्र मिल रही है, लेकिन लेने लायक तो बने। प्रणाम करें, उनकी कही बात को दोहराए, और हिरण्यकश्यपु के मानसिकता वाले व्यक्ति हैं उनके संगति से हम दूर रहें। और चार आश्रमों को वास्तव में जिन्होंने स्वीकार किया है भक्ति उन्नति के लिए, उनके संगति में रहें, और गुरु के प्रति कदापि सपने में भी भूल करके दोष बुद्धि न लाए, नहीं तो सारी भक्ति वैसी हो जाएगी जैसे काजू और किशमिश और बादाम डाल करके खूब बढ़िया खीर बना करके उसके अंदर एक मुठा रेता डाल दो, बालू डाल दो, प्रयास हमें ऐसे करना है दोष रहित, और हम अनवरत प्रयास करें भक्ति के साधनों का, अपने जीवन में प्रयास करें, निश्चित रूप से भगवान की कृपा मिलेगी। और प्रभुपाद जी ने ऐसा सुअवसर हम लोगों को दिया, गोल्डन चांस, सुनहरा अवसर, अगर ये अवसर चला गया तो फिर शायद नहीं मिलेगा, शायद के पक्का नहीं मिलेगा। हरे कृष्ण भागवतों की श्री रघुपाद महाराज की श्री श्री राधिका रमण जी की श्री श्री कृष्ण बलराम गौरिताय की गौर हरि प्रेमानंद है।